नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नॉट थ्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। एरिक इवांस की डोमेन ड्रिवन डिजाइन सॉफ्टवेयर डिजाइन की एक आधारभूत पुस्तक है, जिसका विषय जटिल व्यावसायिक समस्याओं के लिए टिकाऊ सॉफ्टवेयर बनाना है। यह किसी प्रोग्रामिंग भाषा, फ्रेमवर्क या तैयार आर्किटेक्चर की विधि पुस्तिका नहीं है। इसका केंद्रीय तर्क यह है कि कठिन सॉफ्टवेयर समस्याओं का मूल कारण अक्सर तकनीक नहीं, बल्कि व्यवसाय के नियमों, प्रक्रियाओं और अवधारणाओं की अधूरी समझ होती है। इवांस बताते हैं कि डेवलपर और डोमेन विशेषज्ञ मिलकर एक ऐसा डोमेन मॉडल विकसित करें जो वास्तविक व्यावसायिक निर्णयों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करे। पुस्तक रणनीतिक डिजाइन और टैक्टिकल डिजाइन दोनों स्तरों पर मार्गदर्शन देती है। इसमें यूबिक्विटस लैंग्वेज, बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट, एंटिटी वैल्यू ऑब्जेक्ट, एग्रीगेट और एंटी करप्शन लेयर जैसे प्रभावशाली पैटर्न शामिल हैं। इसका उद्देश्य केवल बेहतर कोड लिखना नहीं, बल्कि बदलती व्यावसायिक वास्तविकता के साथ सॉफ्टवेयर मॉडल को लगातार विकसित करने की क्षमता बनाना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले यूबिक्विटस लैंग्वेज के माध्यम से व्यवसाय और कोड के बीच अनुवाद हटाना। पुस्तक का सबसे केंद्रीय विचार यूबिक्विटस लैंग्वेज है, अर्थात ऐसी साझा भाषा जिसे डोमेन विशेषज्ञ, उत्पाद पक्ष और डेवलपर समान अर्थ में बोले। इवांस के अनुसार जब व्यवसाय की भाषा बैठकों और दस्तावेजों तक सीमित रहती है, जबकि कोड अलग तकनीकी शब्दावली में लिखा जाता है, तब अनुवाद की परतें गलत फहमियां पैदा करती है। उदाहरण के लिए, किसी शब्द का व्यावसायिक अर्थ और डेटाबेस या यूआई में उसका अर्थ अलग होने पर नियम गलत स्थान पर लागू हो सकते हैं। साझा भाषा का लक्ष्य हर शब्द को तकनीकी रूप से सरल बनाना नहीं, बल्कि उसे डोमेन के सही अर्थ से जोड़ना है। इसलिए मॉडल के नाम, मेथड, परीक्षण, बातचीत और आवश्यकताएं एक दूसरे को पुष्ट करें। यह प्रक्रिया स्थिर शब्दकोश बनाने भर की नहीं है। नई जानकारी मिलने पर टीम शब्दों की परिभाषा बदलती है और मॉडल को भी बदलती है। इस तरह भाषा डिजाइन का हिस्सा बन जाती है। इसका व्यावहारिक लाभ यह है कि डेवलपर केवल टिकट लागू करने वाला व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि व्यापारिक नियमों पर प्रश्न कर सकता है। साथ ही विशेषज्ञ यह देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर उनके निर्णयों को किस रूप में व्यक्त कर रहा है। पुस्तक इस भाषाई अनुशासन को जटिलता घटाने का प्रमुख साधन मानती है। दूसरा, बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट से एक ही शब्द के अलग मॉडलों को सुरक्षित रखना। इवांस यह मानने से रोकते हैं कि पूरे संगठन के लिए एक विशाल सार्वभौमिक मॉडल बनाना हमेशा उचित है। एक ही शब्द अलग विभागों में अलग अर्थ रख सकता है। ग्राहक, उत्पाद, खाता या ऑर्डर जैसी अवधारणाएं बिक्री, बिलिंग, सहायता और जोखिम प्रबंधन में भिन्न नियमों के साथ काम कर सकती हैं। बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट उस स्पष्ट सीमा का नाम है जिसके भीतर किसी मॉडल और उसकी भाषा का एक निश्चित अर्थ मान्य होता है। सीमा के भीतर मॉडल सुसंगत रखा जाता है, लेकिन सीमा के बाहर उसके अर्थ को स्वतः लागू नहीं किया जाता। यह विचार विशेष रूप से बड़े संगठनों में उपयोगी है, जहां अलग टीमें और प्रणालियां अलग व्यावसायिक उद्देश्यों की सेवा करती हैं। बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट केवल तकनीकी मॉड्यूल या सेवा की सीमा नहीं है, यह जिम्मेदारी, भाषा, डेटा स्वामित्व और टीम सहयोग की सीमा भी हो सकती है। पुस्तक यह भी दिखाती है कि संदर्भों के बीच संबंधों को स्पष्ट रूप से डिजाइन करना चाहिए, बजाय इसके कि साझा डेटाबेस या अनियंत्रित निर्भरताओं से उन्हें जोड़ दिया जाए। आधुनिक माइक्रोसर्विस चर्चा में यह विचार अक्सर उद्धृत होता है, पर पुस्तक का मूल बिंदु सेवा विभाजन नहीं है। मूल बिंदु यह है कि मॉडल की वैधता सीमित होती है और उस सीमा को स्वीकार करने से भ्रम तथा अनावश्यक कपलिंग कम होती है। तीसरा, एग्रीगेट। एंटिटी और वैल्यू ऑब्जेक्ट से व्यावसायिक नियमों की अखंडता बनाए रखना पुस्तक के टैक्टिकल डिजाइन पैटर्न मॉडल को केवल डेटा संरचना बनने से बचाते हैं। एंटिटी ऐसी वस्तु है जिसकी पहचान समय के साथ बनी रहती है, भले उसकी विशेषताएं बदल जाए। इसके विपरीत वैल्यू ऑब्जेक्ट को उसकी पहचान से नहीं, बल्कि उसके गुणों के संयोजन से समझा जाता है। यह भेद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर चीज को पहचान आधारित और परिवर्तनशील बनाने से मॉडल जटिल तथा त्रुटिपूर्ण हो सकता है। इवांस एग्रीगेट की अवधारणा से संबंधित वस्तुओं के लिए एक संगतता सीमा प्रस्तावित करते हैं। एग्रीगेट के भीतर नियमों और इनवेरियंस की रक्षा एक स्पष्ट एग्रीगेट रूट के माध्यम से की जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर संबंधित डेटा को एक ही बड़े समूह में भर दिया जाए। उल्टा, छोटा और स्पष्ट एग्रीगेट अनावश्यक लॉकिंग, जटिल लेनदेन और दूरस्थ निर्भरता को घटा सकता है। यह डिजाइन टीम को पूछने पर मजबूर करता है कि कौन से नियम एक ही परिवर्तन के समय सत्य रहने चाहिए और कौन से नियम बाद में समन्वित किए जा सकते हैं। रिपोजिटरी जैसे पैटर्न मॉडल को संग्रहण के विवरण से अलग रखने में सहायता करते हैं। इस दृष्टि में डेटा सहेजना मुख्य लक्ष्य नहीं है। मुख्य लक्ष्य यह है कि व्यावसायिक व्यवहार और नियम उन्हीं वस्तुओं के भीतर व्यक्त हों जिनके लिए वे वास्तव में अर्थपूर्ण हैं। चौथा, एंटी करप्शन लेयर द्वारा पुराने और बाहरी मॉडलों से कोर मॉडल की रक्षा। बड़ी प्रणालियों में नया मॉडल अक्सर शून्य से नहीं बनता, उसे पुरानी प्रणालियों, बाहरी विक्रेताओं, साझेदार API या दूसरे आंतरिक संदर्भों से संवाद करना पड़ता है। इवांस की एंटी करप्शन लेयर इस स्थिति के लिए एक सुरक्षा पैटर्न है। इसका उद्देश्य बाहरी मॉडल को सीधे अपने कोर डोमेन में घुसने से रोकना है। यदि पुरानी प्रणाली की अस्पष्ट श्रेणियां, असंगत नाम या तकनीकी सीमाएं नए मॉडल में जो की त्यों आयात कर ली जाए, तो नया मॉडल भी पुराने समझौते ढोने लगता है। एंटी करप्शन लेयर अनुवादक की तरह काम करती है। वह बाहरी संदेशों, डेटा और संचालन को अपने संदर्भ की भाषा तथा अवधारणाओं में बदलती है और आवश्यकता होने पर उल्टा रूपांतरण भी करती है। यह अतिरिक्त कोड पहली नजर में महंगा लग सकता है, लेकिन इसका मूल्य दीर्घकालिक है। कोर मॉडल स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकता है, जबकि एकीकरण की जटिलता सीमित स्थान पर रहती है। पुस्तक का संकेत यह नहीं कि हर एकीकरण पर भारी परत बनाई जाए। छोटी, स्थिर और साझा भाषा वाले संबंध में सरल समन्वय पर्याप्त हो सकता है, पर जहां मॉडलों के अर्थ टकराते हों, वहां स्पष्ट अनुवाद सीमा भविष्य की लागत और अवधारणात्मक प्रदूषण को रोकती है। अंत में, ज्ञान क्रंचिंग और रणनीतिक डिजाइन से कोर डोमेन पर निवेश केंद्रित करना। डोमेन ड्रिवन डिजाइन में मॉडल किसी विश्लेषक द्वारा पहले से तैयार की गई स्थिर तस्वीर नहीं है। इवांस ज्ञान क्रंचिंग की प्रक्रिया पर जोर देते हैं, जिसमें डेवलपर और डोमेन विशेषज्ञ उदाहरणों, अपवादों, नियमों और शब्दों पर गहन चर्चा करके उपयोगी मॉडल खोजते हैं। इस प्रक्रिया में विरोधाभास सामने आते हैं। कोई नियम वास्तव में नीति है या केवल पुरानी कार्यपद्धति? कोई शब्द एक से अधिक अर्थ रखता है और कौन सा निर्णय व्यवसाय के लिए निर्णायक है? ऐसे प्रश्न मॉडल को बेहतर बनाते हैं। रणनीतिक डिजाइन इस सीख को पूरे सिस्टम की प्राथमिकताओं से जोड़ता है। पुस्तक को डोमेन, सहायक उपडोमेन और सामान्य उपडोमेन के बीच अंतर करने को कहती है। हर हिस्से पर समान स्तर का कस्टम डिजाइन निवेश करना व्यर्थ हो सकता है। जिस क्षेत्र में संगठन की विशिष्ट प्रतिस्पर्धी क्षमता या महत्वपूर्ण निर्णय निहित हो, वहां सबसे सक्षम लोगों, गहरे मॉडलिंग और निरंतर सुधार की जरूरत होती है। सामान्य क्षमताओं के लिए तैयार समाधान या सरल कार्यान्वयन अधिक उचित हो सकता है। इसलिए डोमेन ड्रिवन डिजाइन केवल क्लास डिजाइन की तकनीक नहीं है, यह सीमित समय और विशेषज्ञता को वहां लगाने की रणनीति है जहां बेहतर समझ सीधे व्यावसायिक मूल्य और अलग पहचान पैदा करती है। निष्कर्ष में, डोमेन ड्रिवन डिजाइन उन डेवलपरों, तकनीकी लीडरों, आर्किटेक्टों, उत्पाद प्रबंधकों और डोमेन विशेषज्ञों के लिए सबसे उपयोगी है जो नियम प्रधान, लगातार बदलते और संगठन विशिष्ट सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं। वित्त, बीमा, आपूर्ति श्रृंखला, स्वास्थ्य, प्रशासन या जटिल प्लेटफॉर्म जैसे क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता विशेष रूप से स्पष्ट होती है। साधारण वेबसाइट, सीमित डेटा प्रवेश प्रणाली या अल्पकालिक प्रोटोटाइप के लिए पुस्तक के सभी पैटर्न लागू करना अनावश्यक बोझ भी बन सकता है। पाठक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह पुस्तक त्वरित नुस्खों की सूची नहीं देती। इसकी भाषा और उदाहरणों को समझने के लिए मॉडलिंग पर धीमे, विचारपूर्ण अभ्यास की जरूरत पड़ती है। फिर भी इसकी स्थायी उपयोगिता इसी में है कि यह तकनीकी संरचना को व्यवसाय की समझ, टीम संवाद और संगठनात्मक सीमाओं से जोड़ती है। समान श्रेणी की कई पुस्तकें या तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग पैटर्न पर केंद्रित रहती हैं या केवल उच्च स्तरीय आर्किटेक्चर पर। इवांस की पुस्तक इन दोनों स्तरों को एक साझा मॉडल के माध्यम से जोड़ती है। यह सिखाती है कि सही क्लास बनाना पर्याप्त नहीं, सही प्रश्न पूछना, सही भाषा गढ़ना और सही सीमा तय करना भी डिजाइन है। जो टीमें जटिलता को केवल तकनीकी समस्या मानने के बजाय ज्ञान और समन्वय की समस्या मानती है, उन्हें यह पुस्तक दीर्घकालिक डिजाइन निर्णयों के लिए एक मजबूत वैचारिक आधार दे सकती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं एरिक एवंस, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।